मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 3 अगस्त 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है अक्षय अवस्थी जो नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। तो अक्षय आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों हम अगस्त के आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, बीच में सितंबर का महीना है और 21 अक्टूबर को इस बैच की शुरुआत हो जाएगी, विधिवत तरीके से शुरुआत हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनसे मैं अब अनुरोध करूंगा कि प्लीज, हालांकि बीच बीच में भी मैं ये बात कहता रहा हूं कि वे सब अपनी मानसिक स्थिति में थोड़ा बदलाव लाना शुरू कर दें। मानसिक स्थिति में बदलाव लाना शुरू कर दें मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपकी अभी तक जो सोच रही है, जो आदतें रही हैं, जो चीज भी आप करते रहे हैं, जो आपका नजरिया रहा है, उनमें अब आप पॉजिटिविटी लानी शुरू करें। पॉजिटिविटी लाने शुरू करें कहने का मतलब है कि आप दिमाग में ये बात लाएं कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, हमने एक उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन कराया है, एकेडमी अपने उस उद्देश्य को हर संभव पूरा करेगी और चूंकि उस उद्देश्य का संबंध हमारे अपने जीवन से है, हमारे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से है, तो हम भी उस उद्देश्य को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देंगे और एकेडमी में हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं। इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स कि हम सीखने जा रहे हैं। यहां आपकी टीचिंग नहीं होगी, आपकी लर्निंग होगी, आप चीजों को सीखेंगे। हालांकि मौखिक रूप से बताया जाना ये संभव नहीं होता है, लेकिन जब आप यहां आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, तब आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में टीचिंग और लर्निंग में क्या फर्क है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में टीचिंग की बात लेकर के आएंगे तो दो चीजें होंगी। पहली बात तो यह कि सिविल सर्विस को टीचिंग से मतलब नहीं है, सिविल सर्विस को लर्निंग से मतलब है। दूसरी बात, जब यहां आपको लर्न कराया जाएगा और आपके दिमाग में होगा कि टीच, मुझे तो टीच चाहिए, तो होगा क्या होगा, यह कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो मेरे काम की चीज नहीं है और वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। आप ये विश्वास करके एकेडमी पर छोड़िए कि आपके काम की चीज क्या है। हम लोग मित्र बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को आपके अंदर कैसे डालने की, उस पूरा करने की क्षमता पैदा की जा सकती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप जरा सा लर्निंग, टीचिंग, सीखना और पढ़ना, इसके अंतर पर विचार करना शुरू कर दीजिए और अपनी मानसिकता को सीखने के लिए जिज्ञासु बनकर लगातार तैयार करिए। कैसे तैयार करेंगे मित्रों, इसके लिए आपको मैं अब यूं कह लीजिए कि एक विनम्र आदेश ही दे रहा हूं कि प्लीज आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनना बिल्कुल भी मिस ना करें। और यदि किसी वजह से किसी दिन आप नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन सुनिए, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी को आप मेंटेन कीजिए। और बहुत अच्छा होगा यदि आप लाइफ मैनेजमेंट भी इसके साथ सुन सके, चॉइस आपकी है, सलाह देना मैं अपना धर्म मानता हूं और मैंने ये बातें बताकर आप यूं कह लीजिए कि अपने इसी धर्म का थोड़ा सा निर्वाह किया है। फ्रेंड्स शुक्रवार की कुछ सूचनाएं होती हैं और उस सूचनाओं में होता है कि कल और परसों यानी कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मिलेंगी पढ़ने के लिए और साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 4 आर्टिकल मिलेंगे, यानी उसमें 2 आर्टिकल योजना के होंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश में, और 2 आर्टिकल कुरुक्षेत्र के होंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। इसके साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों मुख्य विषय के तहत आज हम लोग ई कॉमर्स पर कुछ बातें करेंगे। ई कॉमर्स पर, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लें। इनफैक्ट सच पूछे तो सीधे सीधे न्यूज में तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के हम अभी बात कर सके, लेकिन हाँ जो सबसे बड़ी जो बात हुई है उसे आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और शायद आप उम्मीद कर रहे होंगे कि उसी को मैं आज मुख्य विषय के तहत लूंगा, लेकिन मैंने जानबूझकर उस विषय को नहीं लिया है फ्रेंड्स, और वो विषय है पिछड़ा वर्ग आयोग। आपने न्यूज में सुना, उस पर डीडी न्यूज में तो बहुत लंबा डिस्कशन भी आया बाकायदे एक जर्नलिस्ट से, और फिर बाद में इसके जो हमारे गहलोत साहब मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत की गई। आपने न्यूज में सुना कि लोकसभा ने 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, और उसके तहत पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही गई है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। साल भर पहले भी यह बिल पारित मतलब पेश किया गया था, लोकसभा ने पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा के अपने कुछ रिजर्वेशंस थे, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे जिसके कारण राज्यसभा में वो बिल पारित नहीं हो सका था। राज्यसभा ने जो सजेशंस दिए थे उन्हें कुछ उनके कुछ सजेशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, और अब ये लोकसभा में पारित हो गया है। और चूंकि लोकसभा में बहुत ज्यादा यूं कह लीजिए कि ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से पारित हुआ है, तो दूसरी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया है, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो स्वाभाविक है कि माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी यह बिल पारित हो जाएगा, क्योंकि वहां भी उसे सपोर्ट मिलेगा। हालांकि राज्यसभा में आप जानते हैं कि सरकार की सीमाएं हैं, सरकार के पास जो अभी सत्ता में है सरकार उसके पास पूर्ण बहुमत वहां स्पष्ट मतलब बहुमत वहां नहीं है, तो इसलिए राज्यसभा में बहुत से बिल रुक भी जाते हैं, लेकिन ये बिल पारित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां देखिए प्रश्न ये उठता है कि इसके संवैधानिक दर्जा मिल जाने से क्या होगा। कल न्यूज में डिस्कशन में ये बात बहुत डिटेल में बताई गई है, आपने निश्चित रूप से सुना होगा, अगर मैं उसे ही दोहराता हूं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। मुख्य विषय में मैंने इसको इसलिए नहीं लिया है फ्रेंड्स कि अब डेफिनेटली इस पर आपको एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, इस पर आपको एडिटोरियल आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, बेहतर होगा कि हम उन्हें भी देखें, फिर उन सबको देखने के बाद परीक्षा की दृष्टि से जो स्वरूप उभरेगा प्रश्न का, बेहतर होगा कि हम उसको लेकर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मित्रों मैंने उसे अभी टाल दिया है कि इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, और डेफिनेटली इस पर बात की ही जानी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या स्वरूप ग्रहण करता है। फ्रेंड्स जो दूसरी जो खबर है डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट में, कि आपने देखा कि लोकसभा में राज्यसभा में भी यदा कदा लगातार ये मांग की जा रही है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो कानून था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक डिसीजन दिया था, कि आपको मालूम है कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर कोई अत्याचार होता है तो फिर शिकायत कर किए जाने पर तुरंत गिरफ्तारी होती है और बाद में फिर मामला चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया था, यानी नम्र बनाया था, विनम्र बनाया था, और उसमें उसने ये कहा था कि नहीं तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक अधिकारी हो वो थोड़ी सी प्राइमरी लेवल पर जांच करे और फिर गिरफ्तारी हो, यानी कि ये जो कानून है ये एक तरह से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाता है। इसको लेकर के फिर सभी राजनीतिक दलों ने ऑलमोस्ट जबरदस्त रूप से इसके विरोध में आवाज उठाई, क्योंकि उनका यह कहना था कि इसका फायदा उठाते हुए फिर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जो इन पर अत्याचार करते हैं वो अपने को बड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे और अत्याचार की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। चूंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला था राजनीतिक दृष्टि से भी और सच पूछे तो सामाजिक दृष्टि से भी यह बहुत ही संवेदनशील मामला बन गया था, तो अब सरकार ने कहा है कि नहीं वह संशोधन लाएगी और बकायदे जो ओरिजिनल फॉर्म में अभी कानून है उस कानून को ही वो बनाए रखेगी, और इस पर भी आपने देखा कि सभी राजनीतिक दल इसको सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे एक बात स्पेशली बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप जब भी सिविल सर्विस की तैयारी करें बीच बीच में आप अपने मेंस का सिलेबस देखते रहिए, आप पाएंगे कि मेंस के सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनका जो हमारे समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं जो गरीब हैं दलित हैं इनके प्रति क्या धारणा है, इनका दृष्टिकोण क्या है, ये अलग से मेंशन किया हुआ है और इसका संबंध कहीं ना कहीं उससे भी है, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा जब भी इससे संबंधित विधेयक आता है तो फिर देखते हैं कि विधेयक में क्या व्यवस्था की गई है नहीं, और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर जो ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। ई कॉमर्स का मतलब आप समझते हैं कि आप कोई भी सामान बकायदे ऑनलाइन खरीद मंगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि आप ऑर्डर दे दीजिए, जैसे वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन तो बहुत ही फेमस कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना रखे हैं, जो सामान बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, उनके साथ इनका कॉन्टेक्ट है, और इनकी कोई ऐसी दुकान नहीं है कि आप जाके खरीदें, आप ऑर्डर दीजिए इन्हें, बकायदे ईमेल पर आप ऑर्डर दे दीजिए और कुरियर से वो सामान आपके घर पर पहुंच जाएगा। ये एक सिंपल से मैं आपको इनके काम करने की पद्धति बता रहा हूं। अब हो क्या रहा है, देखिए हो ये रहा है कि भारत जैसे देश में, भारत के संदर्भ में आपको सोचना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका मुद्दा भी है, भारत में हमारे बहुत खुदरा व्यापारी हैं, ये माना जाता है कि लगभग 10-12 करोड़ लोगों का जो पेट है ये खुदरा व्यापार की वजह से चल रहा है, जिसे आप रिटेलर कहेंगे, रिटेल शॉप। होता यह है कि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट है, बहुत पैसे वाले हैं, तो ये एक दो ताकत इनके पास सबसे ज्यादा होती है। एक तो यह है कि ये कंपनियों से बहुत थोक में माल खरीदते हैं कि भैया ठीक है आप मोबाइल फोन बना रहे हो ना, तो हमें आप 1,00,000 मोबाइल फोन दे दो, तो वो कंपनी से नेगोशिएट करके, सौदा करके बड़े सस्ते में उनका मोबाइल फोन खरीद लेती हैं। कंपनी को भी लगता है भैया कि चलो अगर 100 रुपए भी एक मोबाइल फोन में मिल रहा है और 1,00,000 खरीद रहा है तो वो दे देगी। लेकिन अगर मैं रिटेलर हूं और मैं कंपनी से जाकर के कहता हूं कि भैया मुझे 10 मोबाइल फोन दीजिए, तो मुझे तो उस रेट पर नहीं देगी, वो मुझे महंगे रेट पर देगी। तो मुझे महंगे रेट पर जब मिलेगा तो मैं महंगे रेट पर ही उसे बेच सकता हूं, जबकि जो ई कॉमर्स की कंपनियां उसे वो मुझसे सस्ते रेट पर बेच सकती हैं। और मजेदार बात है कि वो आपके घर पर पहुंचा देंगे, कुरियर आपके यहां लेकर के आ जाएगा। तो अब सवाल यह है कि ये जो रिटेलर हैं ये कैसे सर्वाइव करें, इनके सामने तो ये नहीं टिक पाएंगे, ये तो बाहर हो जाएंगे। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा आशंका है लोगों के मन में, इसीलिए भारतीय व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया है कि नहीं ई कॉमर्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सरकार भी देखिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि इसका असर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी मानता है कि इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, उसका वो बकायदे उसके तर्क भी देते हैं, जैसे माना जाता है कि $700 अरब का पूरा भारत का जो है ना वो खुदरा बाजार है, 700 अरब डॉलर, उसमें से जो ई कॉमर्स के जरिए हो रहा है वो 33 अरब डॉलर का है, तो इसका मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट 5% ई कॉमर्स के जरिए हो रहा है। लेकिन अभी की तो ये स्थिति है, ठीक है आगे जाकर के आप 10 साल के बाद क्या कह सकते हैं, 10 साल के बाद हो सकता है कि आधा मार्केट कैप्चर कर ले। तो ये भारत का जो एक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, या कह लीजिए जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ इसका तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो सरकार इसके लिए अभी कुछ रूल्स रेगुलेशन लेकर के आने वाली है, बकायदे उसने एक ड्राफ्ट बनाया है, ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया है। उस ई कॉमर्स के पॉलिसी के ड्राफ्ट के कुछ मुद्दों को लेकर के आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है। मित्रों मैं वो आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें से आप बहुत अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लीज आप उन्हें निकाल लें। पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इस पृष्ठभूमि को जान लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट्स निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मित्रों ये आज के मुख्य विषय के बारे में था। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 4 मित्रों के नाम हैं, आनंद कुमार औरंगाबाद बिहार से, अक्षय अवस्थी, शिवम गुप्ता और प्रियंका रावत देहरादून से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं इस शुभकामना के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि बीच के 2 दिन आपके बहुत ही सुखद तरीके से बीतें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।